हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राणा मेंशन में ध्रुव और मेहर की सगाई की तैयारी चल रही थी। डांस करने के बाद ब्रेक के दौरान मेहर ध्रुव के करीब आई। इस बीच उन दोनों के बीच एक इंटीमेट मोमेंट्स क्रिएट हुआ था, जहां मेहर ने महल में ध्रुव के करीब आकर उसके होठों पर किस किया था। अंदर ही अंदर ध्रुव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो पीछे भी नहीं हटा। आज नहीं तो कल उसे मेहर को हर तरह से एक्सेप्ट करना था, उसके करीब भी आना था, फिर चाहे उसका दिल कितना भी इनकार करे। एक लंबी किस के बाद वे दोनों दूर हो गए, क्योंकि मेहर ब्रेथलेस होने लगी थी। उसका चेहरा लाल होने लगा था और आंखों के कोने में हल्की मुस्कुराहट थी। ध्रुव ने मेहर के करीब आकर उसकी पीठ सहलाते हुए धीमी हांफती आवाज में कहा, ब्रीद, तुम जब मेरी केयर करते हो तो मुझे तुम पर और भी प्यार आता है ध्रुव राणा, मेहर ने तेज सांस लेते हुए कहा। ध्रुव ने उसकी बात को टालते हुए कहा, चलो अब जल्दी से नॉर्मल हो जाओ, हमें बाहर भी जाना है। मेहर ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने कहा, तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। ध्रुव मेहर को वहीं छोड़कर बाहर आ गया था। वही मेहर आईने में देखकर अपने बालों को सही कर रही थी, जो ध्रुव को किस करते समय बिगड़ गए थे। मेहर ब्लश कर रही थी। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, मैं बेवजह उसके ऊपर शक कर रही थी। ध्रुव की पर्सनैलिटी थोड़ी रूड है, क्योंकि ये माफिया एयर है, थोड़ा तो मुझे एडजस्ट करना ही होगा। वही मेहर को अंदर छोड़ने के बाद ध्रुव जब बाहर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। वो इस वक्त बाथरूम में था। ध्रुव गागल करते हुए जल्दी जल्दी अपना मुंह धो रहा था। उसे उल्टी जैसा लग रहा था। मुझे बहुत बेकार फीलिंग आ रही है, कोई बिना किसी की परमिशन के उसे कैसे किस कर सकता है। हम अभी इतने क्लोज नहीं हुए हैं, पर मजबूरी ये है कि मैं उसे दूर भी नहीं हो सकता। किस तक तो ठीक है, पर शादी के बाद कैसे हैंडल करूंगा, इसकी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होंगी। ये उसके किस में ही नजर आ रहा था, जबकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं उसे हाथ भी लगाऊं, ध्रुव ने सिर पकड़कर कहा। ध्रुव अपनी कश्मकश में खोया हुआ था, तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। ध्रुव ने बाहर आकर दरवाजा खोला तो सामने कृषा और अर्जुन खड़े थे। ध्रुव ने अर्जुन को देखकर छोटी सी मुस्कुराहट दी और बोला, तो चलो, आपको टाइम मिल ही गया, याद है आपकी एक फैमिली भी है। हाँ, सब याद है, तभी तो अपना काम छोड़कर आया हूँ। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस, अपने डैड की लेगेसी को काफी अच्छे से आगे बढ़ा रहे हो। पहले उनका काम ज्वाइन किया, तो अब शादी के लिए एक माफिया फैमिली को चुना है, अर्जुन ने बातों बातों में ध्रुव को ताना मारा। अब बच्चे अपने माँ बाप की लेगेसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन करेगा। वैसे आपने शादी नहीं की मामू, वरना मैं श्योर था कि आपके बच्चे भी डॉक्टर ही बनते, ध्रुव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो अर्जुन को सीधे कुछ कहकर कृषा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। इससे पहले कि उन दोनों के बीच कोई बहस शुरू होती, कृषा ने जल्दी से कहा, अच्छा ध्रुव, मैं घर जा रही हूँ, तुम कब तक आ रहे हो। मैं नहीं आ रहा हूँ कृष, मैंने यहीं रहने का सोचा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी यहीं रहें, ध्रुव बोला। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये कृषा से बेहतर कौन समझ सकता था। नहीं, मुझे वहीं रहना है, कृषा ने जवाब दिया और फिर अर्जुन के साथ वहां से जाने लगी। ध्रुव किसी भी तरह से कृषा को फोर्स नहीं करना चाहता था, तो उसने कुछ नहीं कहा। कृषा अर्जुन के साथ वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ उन सबके जाने के बाद तारा घर पर पूरी तरह अकेली थी। उसके पास टाइम पास करने को कुछ नहीं था, जबकि उसका मन इस वक्त बहुत भारी हो रहा था। घर में घूमते हुए अचानक तारा जिम एरिया में पहुंच गई। इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है खुद का गुस्सा निकालने का, मुझे पहले क्यों नहीं दिखा, तारा ने अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हुए कहा। वो ध्रुव के सामने नाजुक और कमजोर दिखने की कोशिश करती थी, जबकि तारा इमोशनली कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, फिजिकली वो दुबली पतली होने के बावजूद काफी स्ट्रांग थी। तारा जल्दी से ट्रेडमिल पर गई और वहां दौड़ते हुए स्पीड को फास्ट से फास्टर करती गई। निकाल दो अपने दिमाग से कि वो कभी तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम इसके पास गई तो कबीर तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, वो यही चाहेगा कि तुम किसी न किसी तरह ध्रुव को नुकसान पहुंचाती रहो, जो तुम कभी नहीं करना चाहती। हमेशा लोगों ने तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम क्या करने जा रही हो तारा, तुमने भी तो वही किया। पहले ध्रुव और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं था, वो मेरे लिए सिर्फ एक क्रिमिनल था, तब कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वो बुरा नहीं है, वो मेरा भी भला चाहता है, फिर मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ, तारा ने हांफते हुए खुद से कहा। स्पीड ज्यादा होने की वजह से कुछ ही देर में दौड़ते हुए तारा बुरी तरह थक गई थी, फिर भी वो नीचे नहीं उतरी और लगातार दौड़ती रही। ऐसा लग रहा था जैसे तारा खुद को सजा देने पर उतारू हो। दौड़ते हुए अचानक तारा के दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, कुछ बुरी यादें, जब तारा सिर्फ 5 साल की थी। इतने साल बीत जाने के बाद पुरानी बातें याद नहीं रहती थी, लेकिन वो तारा की जिंदगी की सबसे बुरी याद थी, जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती थी। तारा बुरी तरह रो रही थी। उसके सामने उसके पापा खड़े थे। उसके पापा ने तारा का हाथ छोड़कर उसे धकेलते हुए कहा, इस लड़की की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मेरी पत्नी, मेरा घर परिवार, अपनी इज्जत और वजूद, सब कुछ। अगर ये मेरे साथ रही तो मैं अपने हाथों से इसकी जान ले लूंगा। उम्मीद है कि आप इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस दिन ये मेरे सामने आएगी मैं खुद इसे मार डालूंगा। तारा के पापा ने उसे उसकी नानी के पास छोड़ दिया था। ये उनके कुछ आखिरी शब्द थे जो तारा के दिल में आज भी तीर की तरह चुभते थे। सोचते हुए अचानक तारा की आंखों में आंसू आ गए। वो कड़वाहट से बोली, सिर्फ आपने ही सब कुछ नहीं खोया था, मैंने भी अपना सब कुछ खो दिया था। 5 साल के बच्चे को आप जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं, जिसे ठीक से कुछ समझ भी नहीं होती। मैं तो आप दोनों के साथ भी नहीं थी, फिर आपने ये क्यों कहा कि मेरी वजह से माँ की जान गई थी। आप दोनों घूमने गए थे अकेले, जब वापस आए तो जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया। नफरत है मुझे आपसे, हर बार मुझे बिना गलती की सजा क्यों मिलती है। तारा अपने इमोशंस में इतनी खो गई थी कि उसे कुछ ख्याल नहीं रहा। वो मशीन पर चलना भूल गई। अचानक वो फिसल कर नीचे गिर गई और उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। तारा दर्द से जोर से चिल्लाई, हाँ तुम्हें भी मुझे ही दर्द देना है तो तुम क्यों पीछे हटोगे। तारा उस बेजान मशीन पर अपना गुस्सा उतार रही थी। उसने अपने पैर की तरफ देखा तो वहां थोड़ी सूजन आ गई थी। तारा जैसे तैसे मशीन को पकड़कर खड़ी हुई और लंगड़ाते हुए अपने कमरे में आ गई। किसी के घर पर ना होने की वजह से तारा खुद ही अपने पैर को ट्रीट करने लगी। भले ही ऑफिशियली तारा की ट्रेनिंग पूरी ना हुई हो, लेकिन उसने लगभग सब कुछ सीख लिया था। इस बीच कृषा घर पहुंच गई थी। घर लौटते ही कृषा सीधे तारा के कमरे में गई। इस वक्त तारा अपने पैर को गर्म पानी में डुबोकर बैठी थी। कृषा ने उसके पैर की तरफ देखा तो उसका पैर सूजा हुआ था। कृषा जल्दी से दौड़कर उसके पास आई और परेशान स्वर में कहा, अरे ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया, तुम खुद से कुछ मत करो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। कृषा वहां से जाने को हुई तभी तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृषा के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर तारा को और बुरा लग रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि अगर कृषा की जगह उसकी माँ होती और उसे इस तरह देखती तो उसे भी उतना ही बुरा लगता जितना इस वक्त कृषा को लग रहा था।
रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ, बस जिम करने गई थी और मुझे नहीं पता था कि ट्रेडमिल की स्पीड कैसे एडजस्ट करनी है, तारा ने नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें जिम करना पसंद है तो मैं ट्रेनर को कॉल कर दूंगी, तुम सीख लेना, पर आगे से ऐसा मत करना, देखो बेवजह खुद को तकलीफ में डाल दिया, कृषा बोली और फिर तारा के पास बैठकर उसके पैर को चेक करने लगी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई डॉक्टर है, वो मुझे ड्रॉप करके गया था, अगर पहले पता होता तो उसे अंदर बुला लेती, कृषा ने तारा के चेहरे की तरफ देखकर कहा। मैं ठीक हूँ, तारा नम आंखों से जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम कितनी ठीक हो, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ, कृषा ने जवाब दिया। तारा ने उसे बहुत रोका लेकिन कृषा डॉक्टर को कॉल करने चली गई। कॉल करने के बाद जब कृषा वापस आई तो तारा ने कहा, प्लीज़ मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, मुझे इसकी आदत नहीं है और मैं चाहती भी नहीं कि आदत लग जाए। तो क्या हो गया अगर तुम्हें आदत हो भी गई, कृषा ने मुस्कुराकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। तब मेरे साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है और मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, तारा ने जवाब में कहा। कृषा तारा की आंखों में देख रही थी जिसमें बार बार दर्द उभर कर आ रहा था। वो कुछ देर तक बिल्कुल शांत रही, फिर उसने कहा, तुम चाहो तो मुझे शेयर कर सकती हो, शायद मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकूं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरी तकलीफ को समझें और ना ही ये कि आपको कभी इन सबसे गुजरना पड़े। बिना माँ बाप के रहना कैसा होता है ये शायद मैं आपको ना बता पाऊँ और ना ही आप समझ पाएंगी, तारा ने जवाब दिया। वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। अचानक कृषा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने तारा के पास बैठते हुए कहा, मेरे भी मॉम डैड मेरे बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जब कृषा ने बताया तो तारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे हमेशा यही लगा था कि कृषा को बहुत लाड़ प्यार से पाला गया होगा। कृषा ने आगे बताते हुए कहा, हाँ मेरे भाई थे जिन्होंने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी और ये जो लेगेसी आज युग के पास है वो कभी उनकी थी। मुझे इन सब से बचाने के लिए भाई ने मुझे एक नॉर्मल लाइफ दी थी, एक मिडिल क्लास लाइफ। सच कहूँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि लेगेसी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है और वो मैं कभी नहीं निभा पाती। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी किस्मत आपको आपकी सही जगह पहुँचा ही देती है। मैं कितना भी भागने की कोशिश करूँ लेकिन किस्मत ने मुझे युग राणा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाँ अब मुझे युग से बहुत प्यार है और कोई शिकायत नहीं है, पर सच बताऊं तो उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, कृषा ने शॉर्ट में अपनी कहानी बताई। तो तारा को सचमुच बहुत हैरानी हुई। उसने जल्दी से कहा, तो क्या आपने उनसे भागने की कोशिश नहीं की? बहुत की, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि कोई अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं सकता। मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और उसी दिन से मैं अपनी सही शख्सियत को पहचान पाई। बाकी जरूरी नहीं कि मेरी फैमिली माफिया से है तो मुझे भी किसी की जान लेनी पड़े। युग और चुव अपनी तरफ से मुझे नॉर्मल लाइफ देने की पूरी कोशिश करते हैं, कृषा ने मुस्कुराकर बताया।
तारा को आज उनके बारे में एक नई बात जानने को मिली थी। अचानक उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई। वो बोली, हर किसी की किस्मत आपकी जितनी अच्छी नहीं होती क्रिश, जो उसकी जिंदगी में युग राणा जैसा पति और ध्रुव राणा जैसा बेटा हो। मेरे पास तो किसी तरह की लेगेसी भी नहीं है, ना कोई प्रिंस चार्मिंग आकर मुझे अच्छी लाइफ देने की कोशिश करेगा। मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए या मेरी खुशियां का सोचे, क्योंकि जिन्होंने मुझे पैदा किया उन्होंने ही मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि मैंने उनकी खुशियां बर्बाद कर दी। तारा के मुंह से अचानक अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें कृषा के सामने निकल गई थीं, हालांकि वो पूरी बात नहीं बता रही थी। अचानक कृषा तारा के पास आई और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। वो प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, फिर तो मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें खुशियां देने वाला लड़का जरूर आए। अनजाने में ही सही, लेकिन तारा को कृषा में अपनी माँ नजर आ रही थी। वो उसके प्यार भरे स्पर्श से मन ही मन सुकून महसूस कर रही थी। कितने सालों बाद तारा को कोई ऐसा मिला था जिससे वो सचमुच दिल से कनेक्ट हो रही थी। कृषा का बिहेवियर ऐसा ही था, उसमें कोई बनावट नहीं थी, थी तो बस मासूमियत जिसे सामने वाला पल में पहचान लेता। तारा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने मन ही मन कहा, अब समझ आ रहा है कि ध्रुव आपको लेकर इतना पजेसिव क्यों है। आप सचमुच बहुत प्यारी हैं और आपकी मासूमियत देखकर दिल में यही ख्याल आता है कि कोई आपका फायदा ना उठा ले। मैं कबीर को आपके परिवार को कभी बर्बाद नहीं करने दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन कबीर अग्निहोत्री कभी राणा फैमिली तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कबीर के पास जाना ही होगा। तारा ने कृषा को मन ही मन वो जगह दे दी थी जो शायद ध्रुव के दिल में कृषा को लेकर थी। उसने खुद से वादा किया कि वो कबीर को उनकी खुशियों को बर्बाद नहीं करने देगी। इसके लिए जरूरी था कि तारा राणा फैमिली से दूर चली जाए। जैसे ध्रुव ने तारा को माफिया लाइफ से बचाने के लिए मेहर से शादी करना चुना था, वैसे ही तारा ने अपने इमोशंस को साइड में रखकर कृषा और ध्रुव को बचाने के लिए ध्रुव और राणा फैमिली से दूर जाना चुना।